आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उन बच्चों के बारे से बात करेंगे जिन्हें स्पीच के अंदर डिफिकल्टी होती है, बात करने में उनकी सलाहियत कम रहती है। उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे कि जो सोशल इंट्रोडक्शन में डिफिकल्टी फील करते हैं।
पेरेंट्स आर यूजिंग अ टैक्सी सर्विस टू पिक एंड ड्रॉप देयर चाइल्ड। इफ अ टैक्सी ड्राइवर चेंजेस, दे विल एक्चुअली गेट डिस्ट्रेस्ड एज वेल। As a human being, we are more sort of like mourning and groaning is part and parcel of our life. And those parents who are blessed with the physically and mentally normal children, but they will actually again focus on what is lacking in their child rather than what the child is achieving. It is up to Allah Azza wa Jalla. To some, He gives boys. To some, He gives daughters. To some, He gives both of them. To some, He doesn't give any.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Doctor, before we proceed ahead towards the proper diagnosis, एक और important issue है कि इस तरह के बच्चों के अंदर कोई dangers involved है। For example, कि ये बच्चा खुद ब खुद बाहर निकल गया और उसने उसको नहीं पता कि रोड क्रॉस करने में मुझे कौन सी एहतियातें करनी है, या खिड़की खुली हुई थी, माँ बाप ने ख्याल नहीं किया, बच्चा जो है वो चौथे पांचवे फ्लोर के ऊपर है और वो खिड़की में खड़ा हो गया है, तो किसी टाइम पे वो जंप कर जाएगा और खुदा न खासा इस किस्म के एरियाज में। इन बच्चों के बारे में माँ बाप को कितना केयरफुल होना पड़ेगा या ये सेफ होते हैं इस हवाले से?
बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। मेरे जहन में इस तरह तवज्जो नहीं गई थी, जाहिर है कि कभी कभी स्किप भी हो जाता है। तो इन बच्चों को डेंजर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होता। तो अब मिसाल के तौर पर हो सकता है कि बच्चा एंग्शियस और अपसेट फील कर रहा है। मिसाल के तौर पर माँ के साथ था, माँ या तो किचन में या टॉयलेट में गई है, अब बच्चे को माँ की हाजत पड़ी, उसे समझ नहीं आ रही कि माँ कहाँ है। अब वो अपसेट हो गया, परेशान हो गया, हो सकता है डोर खुली है, सड़क पे चला गया। अब उसे कोई अवेयरनेस नहीं होगी
गाड़ी आ रही
है, कि भाई गाड़ी आ रही है, क्या करना है। उसे जो अपना काम करना है वो अपना उसमें करना शुरू कर देगा। बाज बच्चे, मतलब यूं भी एक दफा एक केस हुआ था कि एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार था। उसके वालिद साहब उसे किसी दूसरे शहर में ले गए, वहां पे बच्चा अपसेट हुआ। अब बच्चा कोई 100 मील दूर से आया था। अब बच्चा, जैसे मैंने कहा कि असल में 10% इनमें ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड क्वालिटीज वाले होते हैं। अब उसने पहली दफा आया था एक शहर से दूसरे शहर, उसे रास्ता सारा मालूम था, उसने याद कर लिया था। अब वो डिस्ट्रेस हुआ तो बच्चा निकल गया बाहर। अब वो इस्लामी भाई वालिद साहब जो थे उन्हें पता चल गया कि यार ये पहले भी हुआ है कि जब डिस्ट्रेस हो, तो उन्होंने कहा कि हो ना हो
उसी रास्ते पे
ये बच्चा अब वापस अपने शहर की तरफ जा रहा होगा जिस रास्ते से बस आई है या जिस रास्ते से हमारी गाड़ी आई है। तो अब वो पहले तो इर्द गिर्द एरिए में उन्होंने देखा वगैरह, 15-20 मिनट गुजरे, पुलिस को कॉल की, तो इतने में वो बच्चा काफी दूर उसी रास्ते पर निकल चुका था। अब वो बेचारे को कोई पता नहीं है कि मतलब कैसे जो है वो सड़क क्रॉस करनी है। अल्लाह ताला का करम हुआ कि उसको किसी तरह का जो है वो नुकसान ना हुआ। तो यूं ये बच्चे, बहुत अच्छा आपने वो पॉइंट नोट किया कि ये सेफ्टी के हवाले से इन पर नजर रखनी पड़ती है, वरना इनका बहुत नुकसान भी हो सकता है।
इसी तरीके से अगर आप ऊपर की मंजिल पर रह रहे हैं और बच्चा जो है वो खुदा ना खास्ता खिड़की से बाहर छलांग भी लगा सकता है, देखते देखते नोट करते हैं।
मिसाल के तौर पर डोर है सीढ़ियों की तरफ जा रही है, तो अब उसके लिए यही होगा कि यार डोर के पास सीढ़ियां हैं। मिसाल के तौर पर तो हो सकता है कि बेल्कनी की डोर हो वगैरह वगैरह, तो खोल ले या इस तरह करे तो बच्चा गिर भी सकता है। इसी तरह अभी और डेंजर्स ये भी होते हैं कि बाज दफा जो मुआशरे में जराइम पेशा लोग होते हैं या दीगर मनफी सोच के हामिल होते हैं, तो वो ऐसे बच्चों को एक्सप्लोइट भी कर सकते हैं।
वेरी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सो वील डू दिस इन इंग्लिश एज वेल, दैट टू दिस चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स नीड टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस।
दैट्स ट्रू।
वन एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू शेयर is that these children, 10% of them have actually got gifted qualities. So there was one example where a parent took their child into another city. It was probably at least 100 miles away. Because that child was gifted in some way, he was good at remembering routes. When he went to the other city, something happened, the child became distressed. And obviously, without parents realizing, the child managed to come out of the home. Now, they started looking after a few minutes. Where is he? They couldn't find him in the home. They looked initially in the nearby area, but he may be around. 10, 15, 20 minutes passed. They couldn't find him, and they called the police. So the police obviously asked, and the father said that he's got autism. And basically, father knew that when he gets distressed, he will actually go on familiar routes. So he thought that, you know, he may be walking back to the city. And whichever route they used to come, it is possible that that child is going on that route. And that is exactly what happened. Police found him half an hour later on that similar route, far away from the city. But these children will have no sense of crossing the road. They will have no sense of traffic, no sense of danger. Luckily, in this case, the child was safe and sound. These children, if they are on heights, they will not know. And they may sort of simply walk out. In the kitchen, there may be lots of risks associated with these children as well. In terms of lighting fire or things like that. So parents need to be very careful and keep a close eye on this.
MashaAllah. Also, let's come towards the diagnosis. Now, the parents, they have noticed these issues and they have brought the child to you. What is the procedure which is available to assist such difficulties, autism, and what information is available, what other organizations are available, and what the help from the doctor and government is available? Would you please shed a bit light for the viewers of Madani Channel who are watching to these developed countries so they can seek help and they can find those assistance. At the same time, I would like to ask you to, if you could also shed light, so what shall the parents in developing countries do if they've got such issues at their home?
So in terms of the diagnosis, the parents will actually be the first one who will notice that there is a problem with their child. It is also possible that in the developed countries, health visitor may pick up these problems.
Right.
When the child goes to the playgroup area, their interactions will not be appropriate. And the staff there will be actually, they'll be able to notice that there is a problem with this child. And generally in developed countries, within the healthcare professional setting, the healthcare professionals will be able to pick up these telltale signs. And these telltale signs will be apparent from the first year onwards. Right. Within the first year of life, parents will realize there's a problem with this child, or other healthcare professionals will realize there's a problem with this child. And or the problems will be picked up at school. And in this case, the parents actually need to go and see a doctor, their family practitioner, GP, general practitioner, or whatever other names they may be known by in other countries. And the GP or the family doctor will actually ask basic questions, and they will ask who has raised concerns and what problems, and he will then refer to the specialist.
Right.
This specialist, as we mentioned previously, because we are talking about children, so there is child and adolescent mental health services called CAMHS.
Right.
So there will be a referral made to them, and a specialist in this field will actually see the child. And again, they will do a detailed assessment. They will actually take history from the parents. They will obviously ask any other relevant individuals from the school. They also will arrange for this child to be observed in either their home environment or in a school setting. So these specialist nurses, they will actually then go and spend time, about an hour, let's say, in the classroom of that child, without that child being aware that they are being observed. So these, obviously, different professionals will be involved in the assessment of this child. And a lot of this will be basically observation of that child in those three areas.
Okay.
Communication, social interaction, behavior. And a lot of evidence will be gathered, and the diagnosis can be easily confirmed in this case.
Okay.
And this is what happens in developed countries. Once the diagnosis is there, we'll come to the treatment, inshallah, later on. This child will receive a statement of special needs as well. And then the support will be offered in terms of treatment. Hum us pe baat karenge, lekin isse pehle Urdu mein thodi wazahat kar dun. کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم موجود ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं वगैरह, जहाँ पे एजुकेशन जो है वो इतनी नहीं है, अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो अब जब ये बच्चा, जाहिर है कि माँ बाप को तो उनको भी पता तो चल जाएगा कि इस बच्चे के साथ कोई मसला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा मसला क्या है। तो अब ऐसी सूरत में जब पेरेंट्स देखें कि ये बच्चा सही तरह से बात नहीं कर रहा, या दीगर बच्चे आ रहे हैं जो भी हमने इसकी अलामतें बयान की, खेल नहीं कर पा रहा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसके, या बिहेवियर मतलब रोता है, अपसेट होता है, रूटीन चेंज होती है वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में उन्हें भी अपने जो है वो फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उम्मीद है कि जब ये अलामतें बयान करेंगे तो वो फिर किसी ना किसी तरह का जो भी स्पेशलिस्ट वो होगा उसके पास रिफर करेंगे। तो यूं तो इसकी डायग्नोसिस, जैसे हमने अलामतें बयान की कि इस बच्चे में ये तीन प्रॉब्लम एरियाज हैं, अगेन उसमें कुछ ज्यादा सीवियर होंगे, कुछ कम सीवियर होंगे, लेकिन प्रॉब्लम जरूर होगी, ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। तो अगर इन एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर कहेगा कि भाई इनको ऑटिज्म है,
ठीक है।
तो अब फिर उसके हवाले से ट्रीटमेंट पे गुफ्तगू जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है।
और सब एक और हवाले से एक मिथ है हमारे यहाँ पाई जाती है, और वो ये है कि अगर हम इन इश्यूज, ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं या इस तरह किस्म के जो इश्यूज में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर इनकी शादी करा दी जाए तो ये ठीक हो जाएंगे, ये कॉमन पर्सपेक्टिव पाया जाता है हमारी सोसाइटीज में, ये किस हद तक दोस्त है मेडिकली?
मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, और जाहिर है कि मतलब मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड की वजह से बार दफा मतलब कई ऐसे मामलात हुए हैं, मतलब जानने वाले लोगों में, कि किसी को मेंटल हेल्थ का इश्यू हुआ है और कहा कि भाई इसकी शादी करवा दो तो सब ठीक हो जाएगा। और असल में ना बेचारे पेरेंट्स ना वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है, इन्हें को थोड़ी सी उम्मीद दिलवाए ना तो ये कहते हैं कि चलो यार हम कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है बेहतरी हो जाए। अच्छा, इसमें जो है ना यानी कि अगेन सिचुएशन पे डिपेंड है। हम असल में क्या होता है कि देखिए शादी जो है ना ये जिम्मेदारी बढ़ाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज होती हैं,
आने वाले बच्चों पर इम्पैक्ट है।
अगर आप मतलब आपके बच्चे होते हैं तो कौन से वालिदैन है जो कहेंगे कि बच्चों की अपब्रिंगिंग करना आसान काम है? अब अगर एक बंदा ऑलरेडी मेंटल हेल्थ का शिकार है, स्ट्रेस को डील नहीं कर पाता, छोटी सी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, और ज्यादातर आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रेस आए तो इनकी मेंटल हेल्थ वर्स हो जाती है। मेरे प्रोफेशनल हिसाब से, अब जाहिर है कि मैं ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे ये डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन एक जनरली ये होता है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, तो जो आप कह रहे हैं ना कि शादी के जरिए इनका हल होगा, चांसेस हैं कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि शादी का रिलेशनशिप बहुत डिमांडिंग होता है। हाँ, उसकी जगह फैमिली वाले इस बंदे को सपोर्ट करें। अमूमन इस्लामी बहनों के हवाले से ये मसला होता है कि जाहिर है कि पेरेंट्स के माइंड में होता है कि यार इनकी पता, ये अपने घर को जाए, यानी इनकी कौन, जब हम दुनिया से चले गए तो इनकी कौन जो है वो देखभाल करेगा। जाहिर है कि एक दुनिया का निजाम है, बहन भाई मतलब बहुत मुश्किल हालात होते हैं कि ऐसी सूरत में जो है वो उनकी अपनी फैमिली होती है, उनकी एक अपनी लाइफ भी होती है। तो मैं पर्सनली यानी कि प्रोफेशनल ओपिनियन के हिसाब से कि इसको देख लिया जाए कि क्या ये जो है इस्लामी भाई या इस्लामी बहन है, शादी के जो मामलात होते हैं, जाहिर है कि मियां बीवी के हुकूक होते हैं, नान नफके के मसाइल होते हैं, शरई हवाले से जो है ना मतलब मुफ्ती ए इस्लाम से भी डेफिनेटली रजू किया जाए इस पर, पूरी सिचुएशन बताकर क्या ये कमाता है नहीं कमाता, क्योंकि बाज मेंटल हेल्थ सफरर्स होते हैं कमा भी रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ प्रॉब्लम्स भी चल रही होती है। तो अगर वो मतलब नान नफका कमाने का अहल है, मियां बीवी के जो हुकूक है वो अदा कर सकता है, स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकता है, तो ऐसी सूरत में विद सपोर्ट तो कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन अकबर वो नान नफका भी नहीं कमा सकता और मियां बीवी के हुकूक भी नहीं अदा कर सकता, स्ट्रेस भी मैनेज नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और मसाइल का शिकार होंगे, और उल्टा जो है वो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाएगी, और पेरेंट्स के लिए भी मसला बन जाएगा, कि अब जनाब जी वो पहले इस अकेले के मसाइल थे, अब दो चार और के मसाइल भी साथ में हल करो।
और सब अब आप आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया सिलसिले में, हम इसकी ट्रीटमेंट के ताल्लुक से आप इसके हवाले से, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनको हम कम्प्लीटली तो क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम किया जा सकता है, उसमें हेल्प की जा सकती है, तो वो कौन सी ऐसे हेल्प अवेलेबल है? व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल एट दिस मोमेंट वेयर द पेरेंट्स कैन सीक द एडवाइस एंड द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल कैन अल्हम्दुलिल्लाह टेक दिस एडवाइस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ मदनी चैनल?
सो बेसिकली वंस द डायग्नोसिस इज कंफर्म, देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दीज इंडिविजुअल्स। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, the first and foremost is for the parents to get educated about this disease. So obviously here in Western countries there will be courses designed for these parents, there will be training sessions, there are parent groups, there are obviously other societies that will be able to talk to them and tell them, educate them about what the disease is, what are the problems, how you can manage it. And when the parents are aware of these, then when the family members will definitely ask these questions as well, so they can address them, they will actually feel more competent, and rather than avoiding the problem, so they will be able to satisfy others with appropriate answers. So educating yourself can actually be a big relief and a big help. So whatever facilities are available, developed countries, developing countries, I encourage the parents to actually go and attend these courses, know about the disease, get the knowledge, so that you can actually, if it's only if you know the problem, you can solve it. If you don't know what the problem is, the small problem will actually become a catastrophe.
No doubt.
So that's the one first part of the treatment. The second part of the treatment is obviously these children, they actually need a specific help. So if there are speech problems, then speech and language therapy person is involved in developing their speech. This will be offered through school as well. So someone from the speech and language therapy team may come to home, may come to school, and they will actually guide the parents on what things to do to improve their speech. There is also what we call as occupational therapists. These occupational therapists are expert in managing the behavior or offering what the behavioral techniques we can use so that the interaction of this child is improving or at least gets better. Then inside the school, these individuals are usually, if they are being taught at mainstream school, it's more likely that someone with autism spectrum disorder will be educated in mainstream school, but they will not be able to function in a full classroom. They will need a separate classroom where there are fewer children and more teachers to help them. So the ratio between the student and the teacher is appropriate, is greater. So more teachers for less students. And so this will also mean that the sensory environment is more appropriate to their age. And the parents can ensure that the sensory environment in different locations is appropriate so that their behavior doesn't become problematic. If they have special skills, then these professionals can guide on how to channel these special skills. Sometimes these people with autism spectrum disorder can actually make a good living out of these special skills that they have, but they will need a lot of guidance in this respect, in this regard. And this can only be, can become a reality through the help of these professionals. The other thing is that like ADHD and learning disabilities, these people may also develop anxiety disorders. They may also develop depression. They may also develop other mental health problems. So the problems that can be treated with medication, they need to be treated with medication, because ultimately our aim is for the home environment to be safe and sound and nurturing one, rather than where there is a child with constant behavioral difficulties. So a lot of support in this regard is available. Again, it is all without medication. A lot of these things can be done by the parents, but they need education and support. So in developing countries, those individuals whose parents may be suffering with autism spectrum disorder, then somehow they need to find this help. And sometimes online help can be available as well. So if there is no such facilities in their own surroundings, in their own city, in their own locality, then sometimes online help can also be sought. And so these are basically some of the help that can be given to these individuals. It is a lifelong condition. Like ADHD, that one third will come out of it. Unfortunately, with autism spectrum disorder, the children will continue with this problem. The aim is to minimize the disruption. The aim is to whatever abilities they have, to nurture those abilities. The aim is to teach them the communication skills and broaden their horizons so that they can function in a sort of a little bit, broader social interaction. They may not actually be normal, but at least you can take steps to actually improve this.
माशाल्लाह. उर्दू के मदनी चैनल के लिए कुछ चंद जुमले आखिर में कि ये किस तरीके से उन बच्चों को ट्रीट करें, इनका बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए और किस तरीके से इन इश्यूज को वो मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो इससे रिलेटेड होते हैं, इससे मुंसलिक वो इश्यूज जो कि उनके लिए भी स्ट्रेस का बायस हो सकते हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. तो वो कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार की जा सकती है जिससे वो अपने घर के माहौल को बेहतर रख सके, बच्चे के लिए भी अच्छा माहौल रख सके और इस इशू को समझने की कोशिश करें कि ये इशू है और उस बच्चे को कुछ बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो जो उसमें एबिलिटीज है कम से कम उनमें तो वो बेहतरी की तरफ जाए.
जी जी. अच्छा, यहाँ पे वो मेरे बात जहन में आई कि हम जब भी उर्दू का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन हमारे बहुत सारे मुसलमान यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं जहाँ इंग्लिश समझने वाले नहीं है.
बिल्कुल.
तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे मदनी चैनल के व्यूअर्स जो उर्दू समझते हैं खाली अपने एशिया में ही है, दीगर यूरोपियन ममालिक में भी जहाँ इंग्लिश समझी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, तो वो भी इंशाल्लाह जवजल हमारी उर्दू बोलने से फायदा उठाएंगे. तो जब पेरेंट्स को पता चले कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से रिज्यू करें, डॉक्टर इनको जो है वो स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा. हमने डायग्नोसिस पे कलाम कर लिया, अब ट्रीटमेंट के हवाले से आते हैं. तो ट्रीटमेंट की ऑप्शंस बहुत सारी इसकी अवेलेबल है. सबसे पहली बात जो मैं हर सिलसिले में कहूंगा कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस बीमारी के हवाले से मालूमात हासिल करें, अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन के जरिए इनके अपने जहन के बहुत सारे सवालात के जवाब मिलेंगे. इसी तरह फिर जब दीगर फैमिली वाले पूछेंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या मसला है, तो अब आप उनको समझाएंगे कि यार ये मसला है, बजाय इसके कि भाई यार पता नहीं है और फिर खुद परेशान हो जाना, अगला भी परेशान करेगा. तो सारा कुछ तो यूं है कि एजुकेशन जो है ना वेरी पावरफुल वेपन है इन सब जो है वो बीमारियों की यानी कि ट्रीटमेंट के हवाले से. तो सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करें. यूरोपियन ममालिक में जब डायग्नोसिस होगी तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है ना आपको कहेंगे फलां कोर्स में जाएं, वो आपको सिखाएंगे कि ऑटिज्म क्या है, इसमें बिहेवियर डिफिकल्टीज किस तरह आती हैं, उनको ट्रीट कैसे करना है. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत सारे लोग इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, क्योंकि वो एक जहन बना हुआ है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, बस अब ये यहाँ हुकूमत संभालेगी इनको या डॉक्टर इलाज करेगा या नर्स आती रहेगी तो हमें. नहीं, पेरेंट्स बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं. सबसे ज्यादा किरदार पेरेंट्स का ही इसमें होगा.
जितना वो ख्याल रख सकते हैं शायद कोई ना रख सके,
क्योंकि बच्चा 6 घंटे स्कूल में गुजारेगा, बाकी 18 घंटे जो है वो इसके पेरेंट्स के साथ गुजरेंगे. अब फिर जिन बच्चों को स्पीच के हवाले से प्रॉब्लम होता है तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, वो आके बच्चे को हेल्प करते हैं और इससे बेहतरी आती है. फिर इसी तरह बिहेवियर के हवाले से, रूटीन्स के हवाले से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर इसी तरह जो है वो इसमें साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. बाज दफा जो है ना वो किसी तरह की साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, उसके जरिए भी बच्चों को फायदा हो सकता है. और फिर अगर कोई साथ में दीगर बीमारियां, जैसे हमने कहा कि एंग्जाइटी भी ऐसे बच्चों को हो सकती है, डिप्रेशन भी ऐसे बच्चों को हो सकता है, तो उसकी ट्रीटमेंट चाहिए होगी ना दवाई के जरिए. तो यूं इस तरह की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए ऐसे बच्चों को एक तो एबिलिटीज भी ज्यादा आएंगी और उसका इम्पैक्ट भी कम होगा, बिहेवियर भी इम्प्रूव होगा, घर का माहौल भी बड़ा अच्छा रहेगा. और बाज जैसे मैंने कहा था कि 10% ऐसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं कि जो गिफ्टेड होते हैं, तो बाज दफा इनकी ये जो गिफ्टेड स्किल्स होती हैं इसके जरिए भी ये एक आमदन का जरिया बन सकता है इनका, लेकिन क्लियरली उसके लिए इनको गाइडेंस की जरूरत होती है और ये गाइडेंस सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आएगी। लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें, इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सपोर्ट लें, ताकि जो है वो इनके बच्चे को जो है वो मजीद जो है वो हेल्प दी जा सके। ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन के जरिए और हेल्प के जरिए इसका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज कम किया जा सकता है, जिंदगी को अपने लिए भी आसान बनाया जा सकता है और इन बच्चों के लिए भी जो है वो यानी कि जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह। मदीन चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कितनी डिटेल मुफस्सल करार हमने किया, एंड वी हैव लर्न सो मच टुडे रिगार्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन मे हैव हेल्प्ड यू एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। इंशाल्लाह कीप वॉचिंग मदनी चैनल, वी विल बी ब्रिंगिंग वेरी इंटरेस्टिंग मोर टॉपिक्स। डेफिनेटली वन टॉपिक हैज गॉट वेरी डिटेल्ड एरिया टू स्पीक अबाउट, टू टॉक अबाउट। We try to cover as much as we can, but inshallah, Azzawajal, if you keep watching this silsila, mental health matters. Yes, it does matter. Inshallah, Azzawajal, for upcoming silsilas, we'll bring more interesting topics. Until then, keep watching Madani channel. Keep reciting salawat upon Nabi alayhi salatu wassalam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
May Allah bless